awakening to a new way of living.
नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के तत्वाधान में आयोजित माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में। हर साल की तरह इस साल भी माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, मगर इस साल का रूप कुछ अलग है। अगर हम नॉर्मल सिचुएशंस में होते तो शायद आप सभी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में पधारे होते, मगर बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलने की आवश्यकता पड़ी है। हमें आशा है आप अपने घरों में परमात्मा की अनुकंपा से सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी कोशिश यही है कि इस बदलाव के दौर में भी हम आपके साथ रहें। सिर्फ हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पहुंच नहीं सकते या हम किसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल विंग ने माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस को इस साल ई कॉन्फ्रेंस बनाया है, यानी एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है। और हम आशा करते हैं कि भले आप आबू की इन सुंदर वादियों में साक्षात नहीं पहुंच सकते, तो भी अपने मन से आप अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आइए, इस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबको ले चलता हूं आबू की धरती पर, जहां हम फिजिकली न सही मगर अपने मन से पहुंचकर इस कॉन्फ्रेंस का आनंद लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के स्वागत भाषण के लिए मैं अभी आमंत्रित करता हूं मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी लाल साह जी को। डॉक्टर बनारसी पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग में उन्होंने हजारों लोगों को माइंड बॉडी कॉन्फ्रेंस में आकर लाभ लेने का मौका दिया है। इन कॉन्फ्रेंसेस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में उनकी कार्यकुशलता देखते ही बनती है। डॉक्टर बनारसी साथ साथ ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ट्रस्ट के ट्रेजरर और सेक्रेटरी भी हैं। आइए उनसे सुनते हैं स्वागत भाषण।
ओम शांति। मेडिकल विंग के हमारे प्रेसिडेंट एवं मेडिकल विंग की कमिटी एवं जो भी डॉक्टर्स लाइन पर हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सभी डॉक्टर्स का दिल से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से तथा मेडिकल विंग की ओर से हम आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, डॉक्टर्स इतना व्यस्त ऐसे टाइम पर, इतना व्यस्त होते हुए भी स्पिरिचुअलिटी में आपको कितना इंटरेस्ट है कि आप सब अपना सब कुछ छोड़ करके और ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाइन पर हैं, तो हम किन शब्दों में हम स्वागत करें। आपका स्वागत तो स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा कर रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है आप सबकी सेवाएं हॉस्पिटलों में, आज कोरोना वायरस का कहर चल रहा है सभी जगह, आज ऐसे टाइम पर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं, भोजन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, केवल सेवा सेवा एक ही धुन है कि नहीं, जो भी पेशेंट आए वो ठीक होकर के जल्दी से जल्दी अपने घर जाएं, अपने फैमिली में जाएं, ये कौन कर सकता है? सचमुच ये तो परमात्मा ही कर सकते हैं। तो आज आप कर रहे हैं, आज मुझे एहसास हो रहा है, महसूस हो रही है, रियलाइज हो रहा है कि डॉक्टर को सेकंड गॉड क्यों कहा जाता है, यही कारण है। आप इतना समाज की लोगों की सेवा में व्यस्त हैं, हम आपके लिए बहुत शुभकामनाएं कर रहा हूं। परमात्मा से हम दुआएं ये कर रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स का स्वास्थ्य हमेशा ही ठीक रहे, इनका ही क्यों, परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। मेरी दुआ क्या हो सकती है? आप इतनी दुआएं कमा रहे हैं, पेशेंट की दुआएं ले रहे हैं, रिलेटिव की दुआएं ले रहे हैं, दुनिया की दुआएं ले रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य, मुझे विश्वास है, कभी भी खराब हो ही नहीं, आपके डिक्शनरी में ही नहीं है खराबी का। दूसरों को ठीक करने वाला स्वयं कभी भी किसी भी प्रकार के सफरिंग नहीं कर सकता है। तो ये दुआएं कमा रहे हैं, ये दुआएं भविष्य में हमेशा आपके साथ रहेगा, सब कुछ यहां छूट जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये दुआएं साथ जाएगी, ये दुआएं आपके ऑलवेज हर परिस्थिति में सुरक्षा रखेगी, आपका ही नहीं आपके पूरी परिवार के लिए सुरक्षा का काम कोच होगा। तो इसलिए आप महान विभूतियों का, डॉक्टरों का हम फिर से दिल से अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हम ये एक राय कहें, राय देना चाहेंगे कि आप इतना व्यस्त रहते हैं तो एक टाइम आता है टायर्ड तो हो ही जाते हैं, तो मेंटली कभी टायर्ड ना हो, कभी एग्जॉस्ट ना हो मेंटली, इसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी का आपके लिए एक मौका तैयार किए हैं, एक अवसर लाए हैं आपके सामने कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी होगा तो काम करते करते शरीर थक भी जाए, लेकिन अगर मेंटली आप स्ट्रांग हैं, मेंटली आप ये हैं, तो शरीर का कुछ इन एक्शन नहीं होगा। और वो मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए, मेंटली हेल्दी रहने के लिए, मेंटली ये होने के लिए स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये गोल्डन चांस आपके सामने लेकर के आई है ये कॉन्फ्रेंस के रूप में। और आप पहले तो हम आपको माउंट आबू बुलाते थे, तीन दिन के लिए, दो दिन आना जाना लगता था आपका, एक सप्ताह निकल जाता था, पांच दिन निकल जाता था। अब भी ऐसा बाबा ने, परमात्मा ने प्रबंध किया कि घर बैठे, ड्यूटी में रहते, परिवार में रहते, आप इस चीज को सुन सकते हैं, जीवन में धारण कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, अपना ही नहीं परिवार भी खुश रहेगा, परिवार भी सुनेगा, देखेगा, तो उनको भी खुशी होगी, क्योंकि मेंटली स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी। और एक ऐसा टाइम है कि स्पिरिचुअल ही सहयोग दे सकता है। तो ऐसे हम महान हस्तियों को, महान डॉक्टरों को, सभी डॉक्टर्स को हम दिल से संस्था की तरफ से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और कभी भी आपको अपने कॉलेज में, अपने हॉस्पिटल में आपको इस चीज की जरूरत हो तो आप मुझे याद करेंगे, हम हाजिर रहेंगे सेवा के लिए। आप इतना सेवा करते हैं तो हम इतनी छोटी सी सेवा नहीं करेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। तो हम यही शुभकामनाएं करते हैं कि आप सभी सदा हेल्दी वेल्दी, सभी हमारे डॉक्टर्स रहें, कैसा भी परिस्थिति आए, कैसी भी वायरस आए, कोरोना या कोई भी वायरस आए, वो हमारे डॉक्टर्स को हिलाए नहीं, बल्कि हमारे डॉक्टर इतने स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग रहे कि वो वायरस आपसे विदाई लेकर के, बाय बाय करके वो चले जाएं, भारत से, हमारे देश से चले जाएं, पेशेंट से ही नहीं देश से भगाने के लिए हमारे डॉक्टर्स ये तैयार हैं, स्ट्रांग हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, योग को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, योगी जीवन, योगी लाइफ स्टाइल बनानी पड़ेगी। और आपका है कोई है, बहुत उसमें चेंजेज नहीं करनी है, थोड़ी सी अटेंशन देना है, आप सब कुछ करते हुए परमात्मा के साथ आपका बुद्धि रहेगा, आप हमेशा खुद भी स्वस्थ और सारे विश्व की आत्माओं को स्वस्थ रखेंगे, यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बनारसी जी का, जिन्होंने आप सभी का तहे दिल से स्वागत किया। इस कॉन्फ्रेंस के भव्य शुरुआत में इनका स्वागत आप सभी के घरों तक पहुंचा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर अशोक मेहता जी को। डॉक्टर अशोक मेहता मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ वो एक्स मेडिकल डायरेक्टर और कंसल्टेंट कैंसर सर्जन रहे हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के। जाने माने कैंसर सर्जन होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति जिन्होंने ग्लोबल हॉस्पिटल की नींव रखने में अपने विचारों से सहयोग दिया। आज ये ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ट्रस्ट के जितने भी अस्पताल हैं उन सभी के मेडिकल डायरेक्टर हैं, साथ साथ बीएसईएस एमजी हॉस्पिटल के भी ये निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। भारत सरकार द्वारा डॉ बीसी रॉय अवार्ड से भी इन्हें सन 1996 में नवाजा जा चुका है। आइए उनसे सुनते हैं इस कॉन्फ्रेंस के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में।
ओम शांति, वेलकम टू द फर्स्ट वर्चुअल माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस। प्रोसेसेस ऑफ माइंड इन्फ्लुएंस हेल्थ ऑफ द बॉडी, बॉडी ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस माइंड, माइंड एंड बॉडी आर सो इंटीमेटली कनेक्टेड। Every exercise will elevate mood. This is due to feel-good neurotransmitters secreted such as dopamine, oxytocin, serotonin and endorphins. Alternatively, therapies like biofeedback, Tai Chi, guided imagery have been used in treatment of migraine and other painful conditions of the body. Non-infectious chronic diseases are a result of chronic stress and are major health challenges in India. They are related to pressures of job, family, relationship and financial difficulties. Chronic stress results in elevated cortisol levels, diminished T cells, depressed immunity, increased infections, elevated triglycerides and cholesterol, all leading to increase in cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, depression and other related diseases. Addiction to tobacco and alcohol increases the risk of cancer. All these, therefore, should be addressed by meditation, by creating powerful, peaceful, positive thoughts. We have been exploring the healing power of meditation with vegetarian diet, high in fiber, adequate calories, and aerobic exercises in treatment of coronary artery disease and diabetes patients. Medical wing started 35 years back by a small band of doctors has become a large movement with over 3,000 members and has benefited over 30,000 participants in mind-body medicine conferences. Medical wing popularized lifestyle modifications through spiritual health fairs and car rally across the country, starting from 5 cities and traveling over 20,000 kilometers, a Limca world record for longest health rally across the country. We promoted the addiction campaigns against tobacco, getting number of rewards from government of Maharashtra. Regression of care and diabetes have been our most rewarding campaigns. Results are being presented in this conference later. Across the country, cardiovascular diseases affect 5 crores of population and diabetes affects over 7 crore of patients. India is called the diabetic capital of the world and is predicted to have almost 10 crore diabetics in 2030. Garbha Sanskar and Happy Motherhood has been a popular program with Federation of Gynecologists, Societies of India. We have promoted prevention and early detection of breast and cervical cancers. We are promoting Vyasa for personal and team development among the healthcare professional. This program addresses burnout among the doctors and other healthcare professionals. I would like to pay my tributes to Dadiji who was chief of Brahma Kumaris. She left her body 2 months back. This program was developed by Janki Foundation, UK. Daddy Janki, who lived in UK for over 32 years, noticed lack of enthusiasm and joy among the doctors and nurses during her visits to the hospitals in UK. And she asked a team of healthcare professionals, which included general practitioner, psychotherapists, psychologists, occupational therapists, and educational experts, to create a program to help the medical professionals. Vyasa was developed between the 2000 and 2004 in UK and was launched in India in 2006 by President APJ Abdul Kalam. The program is interactive and is facilitated in small groups, not exceeding 15 to 25 professionals. It has 8 modules to promote values of peace, positivity, compassion, cooperation, valuing the self. Vyasa uses spiritual tools of reflection, visualization, meditation, deep listening, and appreciation with fun, play, and creativity, promoting group sharing and developing team spirit. First key principle of the Vyasa is physician heal thyself, to restore his morale and he should enjoy his work. Healthcare professional is at the center of the program. This is a paradigm shift from patient being at the center of all the medical related programs. Second key principle is learning through direct experience from their own personal life and sharing in supportive environment. This is the essence of the program of facilitated experiential learning. Third key principle is a relevance to work and personal life. This program is ideally suited for introduction in medical universities in the country to bring in focus on peace, positivity, cooperation, and compassion with teamwork amongst the young doctors. I would urge Honorable Health Minister to accept our request to introduce Vyasa and medical universities. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक मेहता जी का, जिन्होंने विस्तार से हमें कॉन्फ्रेंस के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया। चूंकि एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है तो बहुत सारे परिवेश और परिपेक्ष आपके लिए भी नए होंगे। मैं आशा करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जो भी चीजें उन्होंने कही है वो सब हमारे लिए मार्गदर्शन का काम तो करेंगे ही, मगर हम कॉन्फ्रेंस के बाद भी इन चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हमारे बीच डॉक्टर प्रताप मेढा जी हैं। डॉक्टर प्रताप मेढा ट्रस्टी हैं और निदेशक हैं ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ट्रस्ट के, जो 7 अस्पतालों का संयोजन करती है। डॉक्टर प्रताप मेढा वाइस प्रेसिडेंट हैं ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के भी। ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने के लिए उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज हरियाणा गवर्नमेंट के पद को त्याग कर अपने आप को ब्रह्मा कुमारी संस्था में पिछले 30 वर्षों से समर्पित किया है। एक बहुत ही जाने माने वक्ता जो माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में हर साल जिन्हें सुनने का हमें मौका मिलता है, आज भी वो हमारे साथ हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रताप मेढा जी से।
ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और मेडिकल विंग के संयुक्त तत्वावधान में ये माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हर वर्ष हम करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, लेकिन इस बार हम ई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपका इसी कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। प्रिय डॉक्टर्स, प्रिय बंधुओं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने वर्षों तक हम लगातार आपसे मिलते आए हैं। आज फिर से मैं आपको मेडिकल विंग का परिचय दूंगा कि मेडिकल विंग की गतिविधियां क्या है। हमने पहले 1983 में होलिस्टिक हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस की थी और मेडिकल विंग का लक्ष्य यही है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाना, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप सभी समझते हैं कि जब रोगी हमारे पास आता है तो काफी कुछ उसके ऊपर हो चुका होता है, काफी पानी गुजर चुका होता है। तो हम सब लोगों तक यही संदेश पहुंचाते रहे कि हेल्दी लिविंग क्या है, हेल्दी जीवन पद्धति क्या है, डॉक्टर्स की भी सेवा की। तो जनरल जो आम हमारे भाई बहन हैं, जो ले पीपल है, उनकी भी सेवा की। हम लोग इस बात को लेकर चले कि विश्व स्वास्थ्य संघ की जो परिभाषा है हेल्थ के बारे में, उसको हम लोगों तक पहुंचाएं कि ये वेल बीइंग है, ये केवल स्वस्थ रहना नहीं लेकिन हमारे जीवन की क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए, जीवन में क्रिएटिविटी भी हो, हम सशक्त भी महसूस करें। और डॉक्टर्स के लिए हमारा यही मैसेज रहा कि अपनी संभाल करना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर डॉक्टर सशक्त होंगे, डॉक्टर नॉलेजेबल होंगे, डॉक्टर इस बात को भी एम्फेसाइज करेंगे पेशेंट्स को कि होलिस्टिक हेल्थ केयर का अर्थ ही है कि अपने आप को अपने स्वास्थ्य के प्रति जवाबदार समझना। तो हमने शुरू में काफी मेले के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा, टॉक्स के द्वारा लोगों तक पहुंचे, एसोसिएशन तक पहुंचे, उन तक यही संदेश हमारा रहता था कि स्वस्थ रहें और स्वस्थ जीवन का संदेश दें। तो हमें जो हम कहते हैं डॉक्टर्स को वो चलने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी अपने स्वास्थ्य का नेग्लेक्ट करते हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस की बात चल रही है तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम अपने पेशेंट्स को भी ये बताते हैं, आम पब्लिक को ये बताते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो प्राइम केयर है, प्रिवेंशन जो है वो फर्स्ट स्टेप्स है। इसलिए हमें अपने जीवन में भी लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है, केवल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का नहीं लेकिन प्रमोटिव हेल्थ केयर का, योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा, स्वस्थ जीवन के प्रिंसिपल्स को अपनाने के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। यही मेडिकल विंग का संदेश रहा है। हम लोगों ने मिलकर कुछ अभियान भी चलाए जिनमें पहला अभियान था माई इंडिया हेल्दी इंडिया। हम समझते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है लेकिन स्वस्थ बनने के लिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स से ज्यादा महत्व ये है कि हम लोगों तक स्वस्थ जीवन का संदेश पहुंचाएं, लोगों को ये बताएं कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ भोजन आवश्यक है, व्यायाम आवश्यक है, नींद आवश्यक है, अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत है। तो मुझे शुरू में याद है कि हमारे दोस्त, हमारे मित्र डॉक्टर गिरीश पटेल ने आरंभ में ही मेडिटेशन एज मेडिसिन की बात की और आज तो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि मन का तन पर प्रभाव पड़ता है और दुआओं से, यानी हम अपने मन को सशक्त बनाते हैं, शांत रखते हैं, मन में एक संतुलन लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, वी बिकम आवर ओन मास्टर्स, तब हम अपने स्वास्थ्य की भी संभाल कर सकते हैं। डॉक्टर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमने कुछ कैंपेन्स ऐसे भी किए कि माई इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया। हम समझते हैं कैंसर है या हार्ट डिजीज है या एर्ली मोर्टेलिटी है, उन सबके पीछे नशों का बहुत असर है, चाहे वो अल्कोहल है या टोबैको है या हार्ट ड्रग्स है। क्या व्यक्ति का होता है, क्या उसमें परिवर्तन आता है, क्या उसका अंत होता है, वो सब हम देखते हैं। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि हम अपने आप को उदाहरण बनाएं, डॉक्टर एक उदाहरण बने कि वो कैसे संतुलित आहार करते हैं, शाकाहारी आहार करते हैं और उनका जीवन कैसे स्वस्थ जीवन है, ओबेसिटी नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स को भी ये मैनेज करने की जरूरत है कि वो खुद उदाहरण बने। इसी बात को लेकर हमने ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण किया। 91 में पहले माउंट आबू में हॉस्पिटल बना, उसके बाद 95 में हमने एक रूरल सेंटर शुरू किया, फिर एक ट्रॉमा सेंटर शुरू किया, इसके साथ एक बड़ौदा में क्लिनिक शुरू किया। इस तरह से धीरे धीरे विस्तार होता गया। अभी हम लोग जालोर में और आसपास में हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि ये जो ग्लोबल हॉस्पिटल है, ये कम्युनिटी हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल विदाउट वॉल्स है। तो हम गांव में जाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि हेल्थ केयर कैसे एक्सेसिबल है, कैसे वो हेल्थ केयर का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि माउंट आबू के आसपास जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी ट्राइबल है, तो ट्राइबल विलेजेस में लोगों को दवा से ज्यादा स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा की जरूरत होती है। उनको ये एजुकेट करना पड़ता है नशों से कैसे बचा जा सकता है। हमारे होम्योपैथिक डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी दवा दी लोगों तक जिस दवा से वो नशों को छोड़ सके। हमने साथ साथ ये भी किया कि जो पेशेंट्स हमारे पास रहते हैं उनको पॉजिटिव थिंकिंग, उनको मेडिटेशन, उनको हेल्दी म्यूजिक, हेल्दी फूड दें, ताकि वो ये समझें कि इन सब परिवर्तन से क्या होता है। लोगों की धारणाओं को परिवर्तन करना, लोगों की मान्यताओं को परिवर्तन करना, ये ग्लोबल हॉस्पिटल में एक नया अध्याय शुरू किया जिसमें कॉरोनरी आर्टरी डिजीज रिग्रेशन प्रोग्राम था, जिसमें डायबिटिक्स की होलिस्टिक हेल्थ केयर थी। डॉक्टर सतीश गुप्ता ने ये बताया कि अगर स्ट्रेस जो है, अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फ्री लिविंग और रिलैक्स्ड जीवन जो है उसको रिवर्स भी कर सकता है। डायबिटिक्स में भी डॉक्टर श्रीमंत साहू ने ये एम्फेसाइज किया कि लोगों को एम्पावर करने की जरूरत है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है डायबिटीज के बारे में, उनको डाइट के बारे में, उनको एक्सरसाइज के बारे में। जब एजुकेट किया जाता है तो लोग एम्पावर होते हैं, वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो ग्लोबल हॉस्पिटल का यही लक्ष्य रहा है कि हम होलिस्टिक हेल्थ केयर दें, लोगों को टोटल हेल्थ केयर दें, न केवल शरीर की संभाल करें लेकिन उनके मन, उनकी आत्मा की भी संभाल करें। यहाँ का वातावरण ही इतना अपलिफ्टिंग है कि जो भी आते हैं उनको ये वातावरण प्रभावित करता है। हमारी नर्सेस, हमारे डॉक्टर्स मेडिटेशन को अपने जीवन में ढालते हैं, रोज दिन में सुबह उठते ही इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे जो उनका जीवन है वो भी लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आता है। तो हेल्थ इज नॉट जस्ट स्टेइंग सिकनेस फ्री, बट इज प्रमोटिंग हेल्थ, लिविंग ए हेल्थ विच इज टोटल फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो मेडिकल विंग का यही लक्ष्य रहा है कि हमें इतने वर्षों से जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मूलभूत पढ़ाई है, जो बेसिक स्टडी है, उसके आधार पे जो हमें हमारे परमपिता परमात्मा शिव ने ये एम्फेसाइज किया कि कैसे योग के द्वारा निरोगी काया बन सकती है, कैसे सात्विक भोजन के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम अपने मन को अगर शांत रखते हैं तो हम अपने जीवन में, अपने संबंधों में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज मैं यही बात को एम्फेसाइज करूंगा, इस बात को ही फिर से दोहराऊंगा कि डॉक्टर्स परिवार, जो डॉक्टर्स भाई बहन हैं, उनका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यही जिम्मेवारी बनती है कि लोगों तक संदेश पहुंचाए कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि आप सशक्त रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी खुद लेनी होगी। दवा नहीं, दुआ भी, केवल मेडिसिन नहीं, सर्जरी नहीं, लेकिन हमें अपने खान पान पर, अपने जीवन शैली पर ध्यान देंगे तो हम सदा स्वस्थ रह सकेंगे, सदा निरोगी रह सकेंगे। यही संदेश ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का है और यही संदेश मेडिकल विंग का है। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रताप मिथा जी का। अब हम आशीर्वचन सुनेंगे ब्रह्मा कुमारीज के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से। ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ इन्होंने इस संस्था में मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में कदम रखे और आध्यात्म के इस लॉ को देश विदेश में फैलाने में अग्रसर रहीं। इन्होंने जापान में हुए वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में ब्रह्मा कुमारीज का नेतृत्व किया। दादी जी आज ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के युवा विंग यानी यूथ विंग की दादी कहलाती हैं। क्योंकि ये यूथ विंग की प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन हैं, तो हम सभी युवा साथी अक्सर दादी को युवा दादी के नाम से जानते हैं, क्योंकि युवाओं के प्रति जो उनका विशेष स्नेह है वो याद दिलाता है हमें कि वो मन से आज भी युवा हैं। भले उनकी शारीरिक आयु कुछ भी क्यों ना हो, मगर पिछले 84 वर्षों से वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवाओं को आगे बढ़ाने में निरंतर अपना योगदान दे रही हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि दादी जी जैसे अकम्प्लिश्ड योगी हमारे साथ हैं। दादी रतन मोहिनी जैसे उनका नाम कहता है, वो रत्नों की खान है। ज्ञान को सुनाने का उनका एक अनोखा अंदाज है। वो अक्सर दिल से बोलती हैं जो बातें दिल तक छूती हैं। ज्ञान के प्रति और ज्ञान रत्नों के प्रति उनका जो स्नेह है वो उनकी बातों में साफ झलकता है। दादी जी आज भले ही 96 वर्ष की आयु में है, मगर जब हम उनको सुनते हैं तो हमें यही लगता है कि आज भी ये युवा हैं। आइए सुनते हैं दादी जी से उनके आशीर्वचन।
ओम शांति। बाप दादा के अति प्यारे, विश्व के दुलारे, हमारे प्यारे सभी डॉक्टर्स भाई बहनों को मधुबन पावन भूमि से मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आदर्श हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज आप सभी को टीवी के माध्यम से मिलकर मुझे अपार खुशी हो रही है। प्यारे बाबा ने पहले ही कहा था कि विज्ञान के साधन आपकी सेवा के काम में आएंगे। थैंक्स विज्ञान के साधनों का, जिसके माध्यम से हम आपसे मिलकर स्नेह और विचारों का लेन देन कर रहे हैं। भले ही हम सब स्थूल रूप से दूर दूर बैठे हैं, लेकिन हमारी शुभ भावना, शुभ कामना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना से के साथ साथ है। इस सर्वव्यापी कोरोना ने पूरे विश्व में फैलकर हमें यह संदेश दिया है कि पूरे विश्व की मानवता एक है और हम सब के दुख दर्द का एक समान है। हम सब याद रहे एक पिता परमात्मा की संतान है, उसे आप ईश्वर कहे, गॉड कहे, अल्लाह कहे, शिव बाबा कहें या और कोई भी नाम दे, परंतु परमात्मा एक है और उसे एक ईश्वर का ज्ञान ही अध्यात्मकता है। अध्यात्मकता ही मानव को अंतरक बल प्रदान करती है, जिससे हम सब एकमत होकर परस्पर सहयोग और सद्भावना से बड़े से बड़ी समस्या का भी समाधान कर सकेंगे। परमात्मा द्वारा प्राप्त आत्मक बल कहीं और से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह निश्चय हो। अपने को आत्मा समझकर उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर याद करने से ही आत्मक शक्ति प्राप्त होती है, जो असंभव को भी संभव कर देती है। धरती पर स्वर्ग बन रहा है, स्वर्ग बनाने में आप भी मददगार हो, क्योंकि जो भी खुद दर्द में है उनको मदद कर दुख दर्द को दूर करके सभी को सुख शांति देने की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोग ही सुख शांति की दुनिया में आएंगे। इस सेवा में ईश्वरीय बल भी मिलता है। अब इस बीमारी ने सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। कहीं से आध्यात्मिकता का प्रथम चरण शुरू होता है। हम सब आपस में भाई भाई हैं और एक पिता की संतान है। यह आत्मक दृष्टि हम अपनाएं तो सभी तरह के भेदभाव समाप्त हो जाएंगे और पूरा विश्व आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा प्रेम, सहयोग और शांति के मार्ग पर चल सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी हिस्सा ले रहे हैं। आप सबका भी इस कॉन्फ्रेंस में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
दादी जी के आशीर्वचनों को सुनकर हम सभी लाभान्वित हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य ही है कि हमने दादी जी के आशीर्वचनों को सुना। एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन की गाथा जो अपने जीवन के अनुभवों को सार गर्भित कर हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन के रूप में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी का, जिन्होंने आशीर्वचनों से हमारी झोली भरी। अगला व्यक्तित्व परिचय का मोहताज नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जिनके मंच पर आते ही एक अनोखी छटा बिखर जाती है। उनका प्रेजेंस ही अपने आप में बोलता है। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी के बारे में। निर्वैर भाई जी ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी जनरल हैं, साथ साथ ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। जिनकी शुभ भावना ये थी कि आबू के आसपास के गांव के रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। इनके इस बड़े दिल के कारण इन्हें देश विदेशों में लोग आज भी प्यार से याद करते हैं। निर्वैर भाई साहब बड़े ही उदार हृदय के व्यक्तित्व हैं। बड़ी ही सरलता से ज्ञान की बातों को आप तक पहुंचाएंगे। हमें यह एहसास भी नहीं होगा कि वो कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो धारण करने में मुश्किल हो सकती है। ये उनकी खासियत है कि मुश्किल से मुश्किल बात को भी सहज शब्दों में कह देना। निर्वैर भाई साहब को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों सम्मानों से सम्मानित किया गया है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र के सेशन ऑन स्पेशल डिसआर्ममेंट में इन्होंने ब्रह्मा कुमारीज का नेतृत्व भी किया है। नेतृत्व, दिव्य गुण और मधुरता के धनी निर्वैर भाई जी आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे सुनते हैं।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, जन जन की सेवा के निमित्त विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ देने की विशेषताओं को सामने रखते हुए सबसे पहले मैं हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मेडिकल विंग के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक मेहता, वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी जी और आपके टीम के साथी, सभी डॉक्टर्स चाहे बॉम्बे से हैं, चाहे दिल्ली से हैं, चाहे ग्वालियर से हैं, चाहे वसई से हैं, चारों तरफ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स, आप सबको 26 से 28 जून में, जून के टेलीकॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, और कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं, सदा ही साथ हैं। इस समय खासकर जब चारों तरफ का वातावरण बहुत भयानक बना हुआ है कोरोना वायरस के कारण, सब तरफ लोगों को बहुत साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी है और फिजिकल भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, उसके लिए ट्रीटमेंट के रास्ते भी मालूम पड़ते हैं, जिसमें एलोपैथिक साइड से भी बहुत अच्छी दवाइयां मिल जाती हैं और आयुर्वेदिक साइड से भी दवाइयां, काढ़े और मेरे जैसे लोगों के लिए घरेलू कुछ दवाइयां भी हैं, उसको दवाई नहीं कहेंगे, हल्दी का सेवन है, कुछ और पीने के लिए कुछ चीजें हैं, उससे एक विशेष बात जो मेरे ख्याल में आती है कि वो भाई बहने, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स के संपर्क में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहने हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है वो एक बड़ा माने रखता है ऐसे टाइम पर। उनका लाइफस्टाइल सहज राजयोगी का है। सहज मींस नेचुरल, नेचुरल योगी, योग अर्थात अपने मन को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ करके और अपने में पॉजिटिविटी की पावर भरना, परमात्मा की शक्ति को इन्वोक करना और उसके साथ में दुनिया की जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए शुभ भावनाएं रखना, ये बहुत हमको मदद करती है। आज मुझे ये हर्ष हो रहा है बताने में कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के 140 देशों में 8-10 हजार सेवा केंद्र हैं, भारत में ज्यादा हैं, लेकिन सेवा केंद्रों पर रहने वाली समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें और उसके साथ में जो उन सेंटर्स पर सेवा के लिए समर्पित भाई हैं ब्रह्मा कुमार, और उस सेंटर्स के सेंटर से संबंधित देश में विदेश में सब जगह जो भी भाई बहने उसका लाभ ले रहे हैं, उसमें देखा गया है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत पॉजिटिव है, सात्विक है, हमारा सोचना ईश्वरी महावाक्यों के अनुसार बहुत ऊंची भावनाओं वाला है, सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना रखते हैं, और फिर इसके साथ में परहेज जो है खान पान का, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होने का परहेज, परमात्मा की याद में रह करके भोजन बना के उसको प्रसाद रूप में सारे परिवार को खिलाना, और इसके साथ साथ जो पानी है उसको भी बहुत प्यार से दृष्टि दे करके लेना, और बाकी तो जो आवश्यक बातें हैं, सफाई की, स्वच्छता की, अपने अंदर बाहर की स्वच्छता और उसके साथ साथ घर की स्वच्छता, हर प्रकार से देखा गया है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रिंसिपल है अपने जीवन में मन वाणी कर्म से पवित्रता को धारण करना। और पवित्रता सिर्फ एक बात की नहीं है, ओवरऑल एक लाइफस्टाइल हमारा ऐसा जो पवित्र जीवन हमारी, तो जहां पवित्रता है वहां शांति है, जहां पवित्रता है वहां देवत्वपन है, जहां पवित्रता है वहां पर आप जानते हैं आपस में भी बहुत रूहानी प्यार रहता है। और इसके साथ में पवित्रता के साथ साथ ईश्वरी ज्ञान की शक्ति और मेडिटेशन की शक्ति, वो हमें वास्तव में हमारी कॉन्शियसनेस लेवल को इतना ऊंचा ले जाती है कि हम वास्तव में इसकी बजाय के डरें कि हमें कुछ हो ना जाए, हम इस संसार को इतना पावन बनाना चाहते हैं परमात्मा के साथ मन लगा करके, अपने प्रकंपन सारे, क्या कहें उसको, तीनों लोकों को देना चाहते हैं। और उसमें भी खास अपनी ये जो धरती माता है इसके ऊपर जो बसने वाले 7 अरब भाई बहने हैं और इसके साथ में जीव जंतु पेड़ पौधे सभी को हम अपना योगदान देते हैं। खासकर जिस समय हम अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं उस समय अपने वो प्रकंपन हम 5 तत्वों को पावन बनाने के लिए देते हैं, ताकि जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और जिन 5 तत्वों के फल स्वरूप हम जी रहे हैं इस संसार के अंदर, वो सब हमें हमारे फ्रेंड्स बन जाएं। 5 तत्वों को अपना फ्रेंड बनाना हमारा ये लक्ष्य है, ताकि देवी देवताओं के समय के लिए जो मशहूर है कि प्रकृति भी उनकी दासी थी। दासी का मतलब कोई दासी बन करके कोई सेवा करने की नहीं, लेकिन देवी देवताओं को कोई तकलीफ ना हो तो उनके लिए समय पर बारिश, समय पर मौसम का परिवर्तन और फल फूल और जो भी उपज है वहां वो सब अच्छी हो, तो उसके लिए भी समय पर जब बारिश चाहिए तो बारिश हो जाए, जब धूप चाहिए तो धूप हो जाए, जब सर्दी का मौसम चाहिए तो सर्दी, पर ऐसी सर्दी नहीं जो हम सहनी ना कर सकें। तो ये सब बातों को देखते हुए आज हमें एक बात के ऊपर विचार चलता है कि आप सब महान डॉक्टर्स जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, टेली कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हो रहे हो, मुझे पता है हजारों की संख्या में आप सब अपने अपने स्थान पर इस कॉन्फ्रेंस में रह पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप विचार करना, ये जो सत्युग के बारे में हम सुनते हैं कि वहां पर प्रकृति बहुत सब की संभाल करती है, वहां पर कोई दुख अशांति नहीं है, वहां पर कोई ऐसा नहीं। अब ये कलयुग का समय है, कलयुग में हम जानते हैं कि ऐसी बातें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कलयुग के बाद सत्युग है, वो कैसे आएगा। तो आज से ही अगर हम अपने मन में पॉजिटिविटी धारण करें, परमात्मा के साथ मन लगाएं और सहज राजयोग के बल से ऐसे प्रकंपन सारी दुनिया के लिए दिल में हम शुभ भावना रख करके वो प्रकंपन फैलाएं, तो आप सोचिए सारे विश्व का वातावरण कितना पॉजिटिव हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल देखते हैं, भारत में कुछ समय से लॉकडाउन होने के कारण चारों तरफ स्वच्छता हो गई, चारों तरफ वो पोल्यूशन खत्म हो गया, चारों तरफ जो भी आप समझो के हर चीज अपनी ओरिजिनल स्वरूप में आ गई। तो मैं नहीं कहता कि लॉकडाउन हो जाए, वी ऑल नीड फ्रीडम, हम सबको तो फ्रीडम चाहिए, लेकिन बंदिश नहीं, पर हम सब के जो विचार हैं वो विचार बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, बहुत सात्विक होने चाहिए, बहुत आपसी प्रेम प्यार के होने चाहिए, और उसके साथ में डॉक्टर्स की तो सेवाएं इतनी ऊंची हैं, मरीज की सेवा करते हैं तो उनकी दुआएं प्राप्त करते हैं, आपकी तो डबल कमाई हो रही है, वो फीस भी आप लेंगे और साथ में जो पेशेंट है वो ठीक होते हैं तो आपको बहुत दिल से दुआएं देते हैं। आई एम वन ऑफ दोज पेशेंट्स, मैं अपने डॉक्टर्स के लिए बहुत शुभ भावना और उनको दुआएं देता हूं कि उन्होंने मेरी तबीयत को इतना अच्छा किया हुआ है कि मैं आज 81 साल की उम्र में भी आपके साथ ऐसे बात कर रहा हूं जैसे मैं अपने 35-36 साल की उम्र में बैठा हूं। तो ये इसका कारण क्या? इसका एक ही कारण है, एक तो मेरी अपनी जो दिनचर्या है उसको मैंने बहुत व्यवस्थित रखा हुआ है। सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू गॉड, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उनके साथ गुड मॉर्निंग करना अर्थात उनसे सर्वशक्तियां आत्मा में भरना, और फिर उसके फलस्वरूप वो शक्तियां हमारे शरीर को भी मदद करती हैं, और फिर ईश्वरी ज्ञान की बात है, ज्ञान के बिना व्यक्ति अंधकार में ठोकर खाता है, और ईश्वरी ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, जो मनुष्य को देवता बनाने वाला ज्ञान है, वो इस समय परमपिता परमात्मा हम बच्चों को दे रहे हैं। आप थोड़ा सा क्योंकि आप बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं और आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपकी सेवाएं बहुत अमूल्य हैं, पर बीच में अगर हो सके तो थोड़ा सा समय ईश्वरी ज्ञान के लिए और सहज राजयोग की थोड़ी प्रैक्टिस के लिए निकालें, तो आप देखेंगे कि आपको कितना उससे पर्सनल लाइफ में कितना फायदा होता, आपको फैमिली लाइफ में कितना फायदा होता, और इसके साथ में आप पेशेंट्स के साथ भी जो व्यवहार है उसमें और भी ज्यादा कुशलता ला सकते हैं। तो आपकी ये टेली कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, और इसकी 100% तो क्या 1000% सफलता है, होने वाली है, इस सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्भर भाई साहब का। मैं आशा करता हूं उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को हम अपने जीवन में आसानी से उतार सकते हैं। आखिर उनकी विशेषता यही है कि हम स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। मैं दोबारा आप सभी की तरफ से निर्भर भाई साहब का धन्यवाद करता हूं। हम अपने अगले वक्ता की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले वक्ता जाने माने साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर डॉक्टर गिरीश पटेल हैं। डॉक्टर गिरीश पटेल रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ लंदन के फेलो हैं। एक बहुत ही जाने माने व्याख्यानकर्ता होने के कारण उन्होंने 5000 से भी अधिक व्याख्यान दिए हैं। पूरे विश्व भर के 40 से भी अधिक देशों में उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। साइकोथेरेपी में डॉक्टरेट, और उनकी विशेषता यही गाई जाती है कि मनोविज्ञान की मुश्किल बातों को वो बच्चे भी समझ सके, इस सरलता के साथ सभी को प्रस्तुत करते हैं। जहां तक मैं जानता हूं उन्हें ऐसे कई बच्चे हैं जो उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। टीवी और प्रसार माध्यमों के द्वारा उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं की है जिसे लोग आज भी बड़े चाव से सुनते हैं। भारत और विदेशों में अनेकों टीवी चैनलों पर उनके 300 से भी अधिक एपिसोड्स प्रसारित किए जा चुके हैं। डॉक्टर गिरीश पटेल ने अनेकों किताबों के लिए भी अपना योगदान दिया है, साथ साथ वो मेडिकल विंग के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं भी देते हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनका वक्तव्य।
नमस्कार। ओम शांति। मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही है। लोग आमतौर पर समझते हैं कि डिप्रेशन बहुत ही कॉमन बीमारी है, सही भी है, परंतु जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, प्रतिदिन अगर हम करीब 20 पेशेंट देखते हैं तो मैंने पाया है कि सबसे ज्यादा ओसीडी के पेशेंट्स हैं। इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि जिसमें कोई ना कोई बात का बार बार रिपीटेशन होता है, जिसको कहते हैं लोग उससे ऑब्सेस हो जाते हैं। और जो सबसे कॉमन है वह है बार बार हाथ धोना, बार बार पैसे गिनती करना, ताला चेक करना। वो व्यक्ति करता ही रहता है, उसको तसल्ली होती नहीं। हो सकता है कि 8 घंटे तक भी स्नान करे, उसको ऐसा ना हो कि भाई मैं ठीक से साफ हो गया। तो एक तो उसमें ऑब्सेशन होता है, फिर कुछ कंपल्शन भी होता है। एक तो विचार आएंगे और फिर उसके लिए वो कुछ करता है, जिसको कहेंगे कंपल्शन। अजीब से हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और उसकी बीमारी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बहुत ही कॉमन है। अभी वास्तव में कई बार तो वह जो बातें बोलता है वो हमने पहली बार सुना होता है। करीब मैं 40 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, परंतु हो सकता है कि हमने पहली ही बार उसके जो लक्षण थे वह सुने। वो तो जब पेशेंट वर्णन करता है कि मुझे यह हो रहा है या मैं ऐसा ऐसा करता हूं, तब हमें पता चलता है कि यह बीमारी है। तो मुख्य रूप से इस बात को समझना है। और यह सभी को होता है, ऐसा नहीं है कि भी ये किसी को ज्यादा किसको कम। बुढ़ापे में भी यह काफी होता है। तो इसलिए इस बीमारी से इम्पोर्टेंट तो है बचना, फिर अगर हुई भी है तो उसे हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो कोई भी बात आप खुद देखिए कि उसका अगर रिपीटेशन हो रहा है। और एक जो बहुत ही कॉमन है, लोग कहते हैं कि हमको भगवान के बारे में भी गंदे गंदे विचार आते हैं। व्यक्ति बार बार भगवान से माफी मांगता रहता है। कहीं स्वास्थ्य के बारे में भी किसको ऑब्सेशन हो सकता है। आज ही अमेरिका के हमारे एक पेशेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी कि जिसमें उसने कहा कि मुझे बार बार ये आता है कि मुझे कोई बीमारी होगी। यहां तक उसने कहा एक बार मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और थोड़ा भी मैं ज्यादा ये हो गया, अरे मेरे को कुछ हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। वो बार बार विचार आएगा और फिर जब तक वो चेकिंग नहीं कराएगा उसको तसल्ली नहीं होगी। ऐसे भी हमने पेशेंट देखे हैं कि जिसके समझो कि 200 कार्डियोग्राम हो गए। अच्छा डॉक्टर तो कई बार फिर ये बोलता है कि मेरे पास कभी भी नहीं आना, अभी तुमको मनोचिकित्सक की ही ट्रीटमेंट लेनी है, मेरी तुम्हें आवश्यकता नहीं है। यहां तक आप सच नहीं मानेंगे, एक पेशेंट को ऐसा होता था वो डॉक्टर के पास क्लिनिक में चला जाएगा, डॉक्टर उसका कार्डियोग्राम लेंगे और फिर बोलेंगे सब नॉर्मल है, तो एकदम ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। इवन डॉक्टर ने यहां तक उसको बोल दिया कि एक है ना मेरा फोटो लेके जाओ, घर में लगा दो, और जब भी वो ना फोटो के आगे खड़े हो जाना और ये सुनना कि मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि तुमको कोई हार्ट में तकलीफ नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। ये एंग्जाइटी में भी हो सकता है, एक प्रकार से कैसे ओसीडी है ना, वो एक बीच की बीमारी है। कि कुछ ऐसे मरीज है कि जिनको वह एक रियलाइजेशन होता है कि ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, जैसे कि भी मेरे हाथ तो स्वच्छ ही है, मैं फालतू इसको धो रहा हूं। परंतु कई ऐसे मरीज होते हैं कि जिनको उसका एहसास नहीं है, जिनको उसका रियलाइजेशन नहीं है, तो तब फिर उनको ठीक करना और भी मुश्किल होता है। और ये जो ओसीडी है उसके पीछे का जो एक जड़ देखी गई है वो अधिकतर एक पाप की भावना में होती है। व्यक्ति को लगता है कि मैंने कुछ पाप किया, मैंने कुछ बुरा किया, और अब उस पाप से मुक्त होने के लिए, तो कहेंगे वो पाप को धोने के लिए वो बार बार कुछ कुछ करता है। वास्तव में हाथ तो उसके स्वच्छ ही है, परंतु उसे लगता है कि तब ही होगा। और यह जिसको ये बीमारी नहीं है वो शायद हंसेगा भी, परंतु वास्तव में ये सारी जो चीजें ना सबकॉन्शियस मैकेनिज्म्स होती है। यहां तो कितना भी समझाओ, मेरी एक पेशेंट है काफी बूढ़े हैं, जब उनका सुनते तो लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि उसको तो लगता है कि मैं बहुत पापी हूं, मुझे कोई माफ नहीं कर सकता। कई बार तो मैंने समझाया, फिर मैं भी थक गया, मैंने कहा देखो अभी तुम जब तक इस पर काम नहीं करोगे तो तुम अपना रास्ता ढूंढो कि यह जो पाप की भावना है उससे तुम्हें मुक्त होना है। और थोड़ा सा ये भी अगर हम समझ ले कि चलो ये मान भी लिया कि भी आपने पाप किया, तो अभी करना क्या पड़ेगा कि भी आगे ये न हो उसका ध्यान देना है, और उससे कुछ शिक्षा लेकर के औरों को भी आप मदद करो तो वो कॉम्पेंसेट भी कहीं हो जाएगा। और बहुत सारी तो चीजें ऐसी है कि जिसमें कुछ भी पाप नहीं है, व्यक्ति की अपनी ही गलत मान्यता है, उसकी जो गलत मान्यता है उसके कारण उसे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने किया वह बुरा किया, वो वास्तव में नॉर्मल हो सकता है। उसी प्रकार के अगर 100 लोगों को देखो तो उसमें 80-90 लोगों को उस प्रकार के विचार आते होंगे, वैसा कुछ न कुछ उन्होंने किया होगा। तो इसलिए यह एक जड़ है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। फिर यह भी कहा गया है कि और एक छोटा सा कई बार की जब पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं बचपन में, अगर पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्टली बच्चों को बड़ा किया है, तो तब भी उनको बड़ा होने के बाद वो ओसीडी होने की जो संभावना है वो बढ़ सकती है। ये बीमारी थोड़ी सी जेनेटिक भी है, क्योंकि जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं कि जो एक ही कोशिका से बने हैं, जिसको कहेंगे मोनोजाइगोटिक ट्वींस, तो उनमें अगर एक को ओसीडी है तो दूसरों को होने की संभावना ऑलमोस्ट 85% है। तो कहीं ना कहीं जीन्स का भी थोड़ा सा रोल अवश्य है। और अब यह समझना चाहिए कि होता क्या है, लोग भी जानना चाहते हैं, भले ये मेडिकल साइंस है लेकिन फिर भी समझना अच्छा है। एक तो ब्रेन के केमिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का डिस्टर्बेंस यह निर्माण कर सकता है। और दूसरा, फंक्शनल एमआरआई से ब्रेन के कौन से पार्ट इन पेशेंट्स में कैसे काम करते हैं उस पर भी अभ्यास किया गया। तो उस अभ्यास को अगर आम व्यक्ति की भाषा में समझाना हो तो एक तो मस्तिष्क का अपना फ्रंट का पार्ट है जिसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और एक बीच में पार्ट है जिसको कहा गया एमिग्डाला, और एक पार्ट है कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वह तर्क से सोचता है, या तो उसका तर्क के साथ संबंध है कहेंगे, और एमिग्डाला है वो इमोशनल है। तो इसमें व्यक्ति के इमोशनल इतने हावी हो जाते हैं कि उसका तर्क साइड में रह जाता है, उसको खुद मालूम है कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वो क्या से क्या तर्क लगाते बता दें। देखो एक और पेशेंट की आपको बात करता हूं, इस पर पूरी किताब लिख सकते हैं, कि वो ऑफिस से घर आएगी तो सोचेगी कि कहीं ना कहीं तो कुछ गंदा लगा ही है, तो घर में जाने के बाद हाथ धोना ऐसा नहीं, वह अपने घर में एंटर होगी उससे पहले रेडी एक फ्रेश सॉक्स रखेगी, वो वाले सॉक्स पहले ही निकाल देगी, फिर वो वाले वो पहनेगी और फिर तुरंत जाके बहुत बार हाथ धोएगी और ऐसा सबको कराने को मजबूर करेगी। अपने बच्चों को, पति को, सबको बोलेंगे कि करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा, वो किसको लगा होगा, किसका कहीं लग गया होगा, उसका फिर मुझे लगा होगा, कि जो संभावना देखो तो 0.001% भी नहीं है और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। परंतु जब तक वो ये नहीं करेंगे उनको शांति नहीं मिलती। तो यह जो समझा रहा था मैं कि एमिग्डाला बहुत ही इमोशनल हो जाता है, और दूसरा जो मैंने कहा कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और जो एक कॉर्डेट न्यूक्लियस है उसके बीच में अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम सब कुछ ठीक से करते हैं, परंतु बीमारी में वो कम्युनिकेशन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है और फिर व्यक्ति कंफ्यूज होता है। और एक है सिंगुलेट गायरस, वो भी एक दिमाग में बीच में पार्ट है, तो वहां पर डिस्टर्बेंस होने से भी ओसीडी होने की संभावना बढ़ जाती है। बोले टेक्निकल बात है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, परंतु जब मैं आपको उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा तब शायद ये जो चीजें है वो आपको कहीं मदद रूप हो सकती है। अब करना क्या है, इसका कहा गया है कि जो मूल जो सब लोग करते हैं अधिकतर, तो वह यह है जिसको कहा गया है कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, कि जो प्रकार का भी ओसीडी है व्यक्ति को उसको एक्सपोज करो, उसको लगे कि मेरा कहीं हाथ लग गया, गंदा हो गया, तो वहां पर उसको एक्सपोज करो। मेरे पास एक पेशेंट आते, कई बार आए, कुछ कुछ उसको फायदा भी काफी हो गया है, वो ये कहेगा कि भाई राइट हैंड से ही दो या लेफ्ट हैंड से ही दो। समझो उसके मन में आ गया कि राइट हैंड, हमने लेफ्ट हैंड से दिया तो वो बेचैन हो जाएगा। अगर उसने भी वो जो भी उसको वहां मैसेज मिलता है थोड़ा भी इधर उधर किया तो गड़बड़ा, वो अंदर में आता है। दूसरे एक डॉक्टर मेरे पेशेंट है कि जो होम्योपैथी के एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि मेरा घर और क्लिनिक सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पे, मैं आराम से चल के जा सकता हूं, परंतु मुझे जाने में 2 घंटे भी लग सकते हैं वहां पर, क्योंकि जैसे मैं नीचे उतरता हूं अंदर में मैसेज आता है कि अभी यहां 4 राउंड लगाओ, अगर 4 राउंड नहीं लगाएंगे तो कुछ बुरा होने वाला है, और थोड़ा आगे जाएगा फिर आएगा अभी पीछे चल 5 कदम, पीछे नहीं चलेगा 5 कदम तो कुछ बुरा होने वाला है, और व्यक्ति को करना ही पड़ता है, तो बहुत सारा उसका टाइम वहां पर बीत जाता है। तो ये जो सारी ऐसे जो का सारे भी ओसीडी है, एक तो हमें उसको वहां पर एक्सपोज करना है और फिर रिस्पॉन्स को करने नहीं देना है, भल कुछ भी हो जाए। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि देखो कुछ भी हो जाए तुम मरने वाले नहीं हो, मैं तुमको गारंटी देता हूं। बोले तकलीफ होगी आपको, अंदर में बेचैनी होगी, होगा एक रोकर रोकर रो नहीं करो तो तकलीफ होगी, आप एकदम डिस्टर्ब हो सकते, डिप्रेस भी हो सकते, परंतु जितना आप नहीं करेंगे उतनी आपकी विजय है। जितना आप कहेंगे कि उसको मान लेंगे, आप हार जाएंगे, उतना ही आपकी ये बीमारी बढ़ने वाली है। तो जितनी भी आप में शक्ति है स्टेप बाय स्टेप भी इसको एक्सपोज करो, वो परिस्थिति को सामने लाओ और उसे करना नहीं। जैसे और एक होता है कि कई लोग अगर जा रहे हैं ना तो गाड़ी के जो नंबर थे बार बार वो रिपीट 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 होता ही रहेगा, वो व्यक्ति बेचारा थक जाते मैं क्या कर रहा हूं, तो तब पक्का कि एक बार आया चलो तो मैं आंखें बंद कर लू कहीं और देखो, परंतु वो गाड़ी का नंबर मुझे रिपीट नहीं करना है। भले मैं भी मानता हूं, अधिकतर पेशेंट कहते हैं सर बोलना बहुत ईजी है करना मुश्किल है, परंतु एक बार तय करो कि ये दुश्मन है उसके साथ मुझे लड़ना है स्टेप बाय स्टेप भी। जितनी हार मानेंगे आप कभी भी बीमारी पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी इसमें अधिकतर हम क्या करते हैं कि उसके लेवल भी हम निर्णय कर सकते हैं, कम से कम, थोड़ा ज्यादा, और ज्यादा और ज्यादा, फिर एक एक को उसे एक्सपोज कराओ। एक टेक्निक है कि जिसमें उसको मानसिक रूप से एक्सपोज कराते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वह सत्य और कल्पना का भेद नहीं कर पाता है। दिमाग के लिए कल्पना भी सत्य है, तो इसलिए उससे हम विजुअलाइज करने के लिए कहते हैं कि आप चित्र निर्माण करो कि अभी अभी वो परिस्थिति मेरे सामने आई है और मुझे वह करना नहीं है। ऐसा भी वो बार 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 करे, तब भी ब्रेन में वही मैसेज पहुंचेगा। ब्रेन में जो सर्किट्स निर्माण होते हैं वह सही सर्किट निर्माण होगा। और एक अच्छी टेक्निक यह है कि अच्छे से रिलैक्स हो करके फिर अपने आप का ये एनालिसिस करो कि भी कहीं गिल्ट फीलिंग आई या कहां से आया, कौन सी बात ने ये किया। कई बार उसको कारण मिल सकता है आपको। ये की बहन का एग्जाम्पल है कि उसको जो ओसीडी था, हमने पहली बार सुना था कि उसका छोटा बच्चा था, वो बार 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 चेक करेगी कि कहीं वॉशिंग पाउडर तो नहीं, कहीं वॉशिंग पाउडर तो नहीं, कहीं वॉशिंग पाउडर तो नहीं। अपने को ऐसा लगेगा कि भी माँ को डर है कि बेटे को वॉशिंग पाउडर उसके मुंह में आ जाएगा, वो खा लेगा और बीमार हो जाएगा। परंतु भी प्रश्न है कि वॉशिंग पाउडर ही क्यों, जहर क्यों नहीं। तो जब थेरेपी कर रहे थे, बड़े टाइम लगता है, वो एक ही बार में नहीं होता है, जब कर रहे थे तो यह कारण उसका मिला कि जब उसकी शादी हुई और वो ससुराल गई तो एक बार उसको चाय बनाने के लिए बुलाया गया। तो चाय बनाने के लिए गई तो गलती से उसने शुगर के बदले वॉशिंग पाउडर डाल दिया, और जब किसने पिया तो कहा रही क्या है, तो उसको पता चला माय गॉड मेरे से इतनी बड़ी गलती है। उसने कहा वो तो बात मैं भूल गई, उसके बाद और चीजों में बिजी हो गई, सब कुछ भूल गई। परंतु करीब 6 साल के बाद जब यह बच्चा हुआ, वो भी करीब 1-2 साल का हुआ, थोड़ा एक्टिव हुआ, तब मेरे को ये वापस आ गया। तो ऐसा क्या कहेंगे कि भी उसको वो एंग्जाइटी हुई जब बच्चा बड़ा हुआ, तो कि बच्चा यहां वहां जा रहे, कहीं लग जाएगा, कुछ होगा, और सबकॉन्शियस में कहीं कोने में यह बात भी थी, अरे मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी, वॉशिंग पाउडर गया। तो सर ये दो चीजें कहीं लिंक हो गई और बार बार उसको उसी की ओसीडी होने लगी। तो ऐसे कुछ कारण भी मिल सकते हैं और उस पर भी हमें कोशिश करके विजय प्राप्त करनी है, जो साइकोथेरेपी में हो सकता है, जिसको हम ना सेल्फ हेल्प टेक्निक कहते हैं, कि आपको डॉक्टर के पास जाना न पड़े। तो सेल्फ हेल्प भी मदद रूप है। ये जो कहा हम अपने आप करें, कुछ मन और शरीर को रिलैक्स करने की टेक्निक सीखे, और सबसे अच्छा है मेडिटेशन। मेडिटेशन का अभ्यास बहुत रीति से आपको मदद करेगा। मेडिटेशन का अभ्यास सबसे पहले तो आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा, कि जब मन शांत होगा, रिलैक्स होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको रियलाइजेशन आएगा कि भी ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, इस पर विजय प्राप्त करना है। सेकंड, मेडिटेशन का अभ्यास आपका विल पावर भी बढ़ाता है। आज जानते हुए भी लोग उससे लड़ना नहीं चाहते। एक और मेरा पेशेंट है कि जो क्या करता है, जब स्नान करता है ना, तब बाहर मां को बोलता है कि यहां खड़े हो जाओ और ऐसा ऐसा बोलो, और उसको तसल्ली नहीं होती है। 6 घंटे भी हो जाए, मां रोने लगे तो भी वो बोलेगा नहीं तुमने बरोबर नहीं बोला, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, चलता ही रहेगा। तो उसको मालूम है, परंतु वो लड़ना नहीं चाहता इसके साथ। मेडिटेशन से आपका विल पावर बढ़ता है, और मेडिटेशन से जब विल पावर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक आप इससे लड़ते हो। मेडिटेशन का अभ्यास आपके जो ब्रेन के सर्किट्स ठीक से काम नहीं करते उसको ठीक करने में भी ऑटोमेटिक मदद करता है। कुछ स्पेशल नहीं करना है, जस्ट अगर आप रोज करीब 20-25 मिनट दिन में दो बार या तीन बार मेडिटेशन करो जो हर प्रकार से आपको मदद करेगा, तो उससे ऑटोमेटिक ब्रेन के सर्किट्स है वह हेल्दी होते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक संतुलन निर्माण करता है। दूसरा, मेडिटेशन से वह गिल्ट फीलिंग भी जाती है। मेडिटेशन में जो मूल बात है, जब मैं भी ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मेडिटेशन करने लगा तो तब मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी कि इस ज्ञान से स्वमान बढ़ता है ना। झुप्पड़पट्टी के गरीब लोग भी आते थे, भी पहले दिन आए, स्नान करके भी नहीं आए, कैसे भी गंदे कपड़े, लेकिन अगर 15-20 दिन आने लगे ना तो भले उनकी कोई इनकम नहीं बढ़ी परंतु अच्छे से तैयार होके आए, स्नान करके आए, ठीक से कपड़े पहन के धो करके आए, शराब पीना छूट गया। क्यों? क्योंकि ये जो मेडिटेशन उससे ऑटोमेटिक आता है कि भी मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, दूसरा कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, एक स्वमान के रूप में भी आप अपने आप को दे सकते हैं कि दिन में करीब 7 बार ये रिपीट करो कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं और मेरे में शक्ति है, मैं कोई भी आदत पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता हूं। मेडिटेशन में परमात्मा से भी जब शक्ति मिलती है, परमात्मा से भी शांति मिलती है, कहीं चलो गहराई में ये भी है कि मैं अपवित्र हूं तो भी यह सोचो मेडिटेशन करके कि परमात्मा पवित्रता के सागर है, मैं उनकी संतान हूं तो मेरे में भी वो पवित्रता आ रही है, मैं भी पवित्र बन रहा हूं। तो इससे भी जब वो ऑटोमेटिक आएगा तो ये बीमारी पर विजय प्राप्त करने में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सिर्फ आवश्यकता है कि इसका अभ्यास करना। अब अगर आपको ओसीडी है तो एक तो इसको समझ लो, फिर ये जो सारी बातें बताएं उसका अभ्यास करो। देखो, और एक पूरा करने से पहले आपको सिंपल सी टिप देता हूं, बहुत ही पावरफुल ये टिप है कि जो मैंने कहा कि ब्रेन के सर्किट्स है वह डैमेज हुए तो वह ठीक से काम नहीं करते, तो क्या करो, दोष वह सर्किट को दो, अपने आप को नहीं दो कि भी वो सर्किट ठीक से काम नहीं करते इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे, वो सर्किट ठीक से काम नहीं कर रहा इसलिए मुझे लगता है मैंने अभी भी पैसे ठीक से गिनती नहीं की है, या तो और कुछ, तो बोले वो सर्किट को जो करना हो करो, मैं अपना काम करूंगा। आज कई बार होता है ना, आवश्यकता है तो भी बहुत गर्मी है फिर भी व्यक्ति जाकर के काम करता है, उसे वो दोष उसको देगा कि भाई एटमोस्फियर गर्म है परंतु मुझे काम करना है। देखो परिवारों में झगड़े होते तो बोलते उसका दोष है मेरा नहीं है, तो यहां भी आप वो जो ब्रेन के सर्किट्स को केमिकल्स को दोष दो और मैं तो अच्छा हूं तो इसलिए मुझे वो रिपीटेशन नहीं करना है, भी वो बोल रहा है, जैसे कहे ना कि भी कोई आपका दुश्मन है वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, परंतु जब आपको मालूम पड़ता है कि दुश्मन है तो उसकी बात आप सुनते नहीं, आप सही राय पे ही जाते हो। ऐसे ये समझ लो कि वो अंदर में दुश्मन है जो मुझे बोल रहा है कि हाथ धो, पैसे गिन, इधर राइट हो लेफ्ट हो, परंतु उसको मुझे सुनना नहीं है। बस मैं समझता हूं कि आप ये सब बातें जरूर करेंगे तो इस बीमारी पर अपने आप भी विजय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फिर भी नहीं हो तो अच्छे डॉक्टर की भी राय ले सकते हैं और कोशिश ये करने की भी कम से कम दवाई और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प, मेडिटेशन आदि, तो आप देखेंगे कि बीमारी पर तो विजय प्राप्त करेंगे परंतु आपकी स्व उन्नति भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
डॉक्टर गिरीश पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपकी बातें सुनकर हमारे साथी जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो कुछ चीजें अपने लिए टिप्स के रूप में जरूर ले सकते हैं। माइंड बॉडी मेडिसिन के ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन में आप सभी ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का भव्य उद्घाटन हुआ है जो आने वाले 2 दिनों तक चलेगा। कल और परसों हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का पूरा लाभ आप लेंगे ऐसी हमें आशा है। कल सुबह के सत्र में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल।